नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि संशोधित जीएसटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों के दूसरे चरण से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। वित्त मंत्रालय 54 उत्पादों की कीमतों पर कड़ी नजर रख रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधित कर ढांचे का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में जीएसटी बचत उत्सव पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इन जीएसटी सुधारों का कार्यान्वयन लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद के बीच सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दरों में कमी, प्रक्रिया को सरल बनाना, स्लैब की संख्या 4 से घटाकर 2 करना और वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है।
In some few items,
कुछ वस्तुओं में इनपुट कर आउटपुट कर से अधिक है। अब जबकि हमने आउटपुट कम कर दिया है तो उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले उत्पाद में कुछ समायोजन करना होगा। इसलिए जहां लाभ के रूप में 10% अंक मिलने की उम्मीद है वहां 8.25 अंक तक जाना पड़ सकता है। वास्तव में अब भी आउटपुट कर और इनपुट कर के बीच बहुत कम वस्तुएं हैं।
बिटवीन द आउटपुट टैक्स एंड द इनपुट टैक्स।
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले नवरात्रि त्योहार की तुलना में इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में 25% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग का लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को मिल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथोमाइसिन विकसित कर ली है। नई दिल्ली में कल एक चिकित्सा कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह एंटीबायोटिक दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों को समाप्त करने के लिए प्रभावी है। उन्होंने बताया कि दवा विशेष रूप से कैंसर रोगियों और अनियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। श्री जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश को अपने वैज्ञानिक और अनुसंधान विकास को गति देने के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने बताया कि एआई आधारित हाइब्रिड मोबाइल क्लिनिक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, सहयोग और करुणा का सम्मिलन देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से स्वास्थ्य प्रणालियों में एआई के प्रभावशाली और व्यापक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री के लिए वैश्विक आह्वान की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि चयनित प्रविष्टियों को वैश्विक दक्षिण में एआई स्वास्थ्य उपयोग मामलों पर केसबुक में एक अध्याय लिखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे और किशनगंज से मोहम्मद कमरूल होडा को टिकट दिया गया है। कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया शहर विधानसभा क्षेत्र से मोहन श्रीवास्तव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। इस चरण में राज्य के 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि कल है। अयोध्या दीपोत्सव 2025 के सबसे भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। अयोध्या जल्द ही मिट्टी के लाखों दीयों से जगमगाएगी जिससे पवित्र सरयू नदी के तट पर एक दिव्य दृश्य का नजारा देखने को मिलेगा। आरती स्थल को नया घाट से लक्ष्मण घाट तक 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में 200 प्रतिभागियों के लिए स्थान है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व शुभमन गिल कर रहे हैं। उन्हें रोहित शर्मा के स्थान पर कप्तान नियुक्त किया गया है। उधर महिला क्रिकेट विश्व कप में आज इंदौर में मेजबान भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।